सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु मत या मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की गुण स्थान की चर्चा चल रही थी। बारहवें गुण स्थान तक की चर्चा हो चुकी है। बारहवें गुण स्थान में जीव सर्वथा मोह रहित होता है। जैसे पात्र में रखे हुए पानी और पानी के साथ घुला हुआ मिट्टी, मिट्टी को अलग कर दिया गया है और पात्र में पानी मात्र बच गया है, तो मिट्टी को अलग करके पानी को अलग करके रखा है। इस प्रकार की दशा बारहवें गुणस्थान में होती है। यह बारहवें गुणस्थान अंतर्मुहूर्त काल का होता है। अंतर्मुहूर्त काल में जीव को क्या होता है ये यदि हम विचार करें तो मोहनी कर्म को सर्वथा नष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त काल में जीव को नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान क्यों रुका हुआ है, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है, हम सब लोगों को ये भी विचार करना चाहिए। मोहनी कर्म के उदय के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। हमारी सत्ता में जो 25-28 प्रकृतियां कर्मों की पड़ी हुई हैं, उनका हम क्षय नहीं कर पा रहे हैं। इनका क्षय बारहवें गुणस्थान में होगा और बारहवें गुणस्थान में क्षय होने के अंतर्मुहूर्त काल में ही क्षय बारहवें गुणस्थान में होता है, ऐसा नहीं, क्षय होने के बाद बारहवें गुणस्थान प्राप्त होता है और बारहवें गुणस्थान प्राप्त होने के अंतर्मुहूर्त काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो हम सबको केवल ज्ञान ही प्राप्त करना है तो हमें यात्रा तो करनी पड़ेगी, आज करें या कल करें, यात्रा तो करनी ही है। कल करे सो आज करे,
आज करे सो अब,
आज करे सो अब,
पल में
पल में
प्रलय
प्रलय
होएगी,
बहुरी करेंगे कब। हमें जल्दी जल्दी करना है, जो करना है जल्दी ही करना है, कैसे जीना है जीने की कला भी सिखाई जा रही है, और ऐसे जीने की कला आ जाएगी तो गुणस्थानों की सीढ़ियों को चढ़ना कोई कठिन बात नहीं है। एक 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 करके हमें गुणस्थान चढ़ने का प्रयत्न करना है। श्रावक यदि धर्मात्मा बन जाए तो मूल रूप से वह सम्यक दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से धर्मात्मा बनता है, बन सकता है। इससे आगे आगे एक कदम रखेगा तो अनुवृत्ति बन सकता है। इसके पश्चात तो वह श्रावक नहीं रह पाएगा। श्रावक के दो ही गुणस्थान हैं, चौथा और पंचम। नीचे के गुणस्थानों को हम श्रावक के गुणस्थान नहीं कह सकते, वो गृहस्थों के गुणस्थान बता सकते। गृहस्थ ने घर में रहने वाला, ग्रह स्थ, ग्रह यानी घर, स्थ यानी रहने वाला, तिष्ठति इति स्थ, ग्रहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहे उनको गृहस्थ कहते हैं। और घर में रहते हुए यदि धर्म की ओर रुझान बढ़ती है, आत्म तत्व की साधना की ओर उसका लक्ष्य चला जाता है, तो धीरे धीरे उस ओर भी वह प्रयत्नशील बन जाता है और जो करना चाहिए उन कर्तव्यों को करने लगता है। जब कर्तव्य करने लगता है तो विशुद्धि बढ़ती है। जब विशुद्धि बढ़ती है तो कर्मों पर असर पड़ने लगता है। कर्मों पर जब असर पड़ने लगता है तो प्रायोग्य लब्धि आदि लब्धियां प्राप्त होती हैं। और प्रायोग्य लब्धि के बाद यदि करण लब्धि की उपलब्धि कर लेता है तो अंतर मुहूर्त काल में सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। प्रथम गुणस्थान को पार कर वह चौथे गुणस्थान में आता है। ये सब भावों का खेल है। कैसे भाव? भाव हमारे मोहनी कर्म के उदय के कारण मोह सहित भी होते हैं, और उनका उपशमन आदि हो जाए तो उपशमित रूप भी होते हैं, और उनको बिल्कुल सर्वथा हटाया जाए तो मोह रहित भाव भी हो सकते हैं। ऐसे जीव की परिणति है। इसलिए अरहत धर्म को हम क्या कह सकते हैं? दार्शनिक धर्म, आत्म साधना का धर्म, अभ्यंतरी यात्रा का धर्म, प्रदर्शन नहीं दर्शन का धर्म। समझ में? प्रदर्शन नहीं है इसमें, इसमें तो केवल दर्शन है। भीतर 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 जा करके अपने अंतरंग परमात्मा का दर्शन करना है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा में जब हम अपने परमात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारा कार्य पूर्ण हो गया। हम भी परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा बनने की शक्ति है। यही जैन दर्शन का मूल तत्व है। जैन धर्म परमात्मा बनने वालों के लिए है। संसार में परिभ्रमण करने के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, और जो मोह नहीं छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी नहीं है, जो इंद्रिय विषयों में रहना चाहते हैं उनके लिए भी नहीं है, जो अंतरंग में दृष्टि ही डालना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी नहीं है, जो अपने आत्मा के बारे में चिंतनशील होना नहीं चाहते उनके लिए भी नहीं है। किसके लिए है जैन धर्म? जैन धर्म केवल हम अपने को जाने और जानने की जिज्ञासा जिनमें उत्पन्न हो उन जिज्ञासा व्यक्तियों के लिए, जिज्ञासा पूर्ण जीवों के लिए, आत्माओं के लिए यह जैन धर्म का उपदेश अरहंत भगवंतों ने किया है। इससे बहुत हम आनंदमय बना सकते हैं। जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हमें मोह की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, हमारे अज्ञान की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, हमारे अंधश्रद्धा आदि जो परिणाम अनादिकाल से चले आ रहे थे उनकी ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा, और आत्म संशोधन करके प्रतिक्रमण करना पड़ेगा और प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। प्रतिक्रमण यानि आत्म संशोधन, प्रत्याख्यान यानि उन दोषों का त्याग, और भविष्य में हम इन दोषों को त्याग करने के बाद ग्रहण न करते हुए हम अपनी आत्म साधना करेंगे, इस प्रकार का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो इस प्रकार का लक्ष्य बनता है तो हम जैन धर्म को साधने के लिए पात्रता हासिल कर चुके हैं और हम योग्य हैं और हमारे लिए धर्म है, ये कहा जा सकता है ना?
हम किधर हैं?
हम किधर हैं? हम पंडाल में हम पंडाल में हैं और पंडाल में भी शरीर है और शरीर में हम हैं, नाव में बैठे हैं, शरीर नाव है और उस नाव में हम बैठे हैं। उस नाव में बैठे हुए को ही देखना है, वही हम हैं, हमको ही हमको देखना है, हमको ही हमको देखना है। नाव में बैठे बैठे हम भरी इधर उधर ही देखते थे अभी तक, अब इधर उधर नहीं देखना, हम बैठे हैं, हाँ हम ही हैं। हम क्या हैं? संसारी हैं। अभी वर्तमान में हम भगवान बन सकते हैं।
अभी तो हम अपने संतों को देख रहे हैं महाराज, अभी तो हम वीतरागी संतों को देख रहे हैं अपने सामने, पंडाल में होते हुए भी लेकिन अपने वीतरागी संतों को देख रहे हैं।
उन्हीं को देखना केवल, दूसरे को नहीं देखना। 24 घंटा वही दिखना चाहिए तो ऑटोमेटिक आत्म साधना होगी। रागियों को देखने से राग भाव पैदा होता है, धनवानों को देखने से धन की इच्छा उत्पन्न होती है, खुद को भी धनवान बनने की इच्छा होती है। वीतरागियों को देखने से वीतराग परिणामों को, मैं भी क्यों हासिल न कर लूं और मैं भी क्यों उनके जैसे आनंद को न लुटा लूं, मैं भी क्यों परमात्मा न बनूं, इस प्रकार के विचार आते हैं। हमने जीवन जीने की कला सिखा दी है, आपको चलना है। आपका शरीर और आप घर में भले ही हों, मन वीतरागी गुरुओं में, मन वीतरागी देवों में, मन वीतराग पोषक शास्त्र में रहता है तो घर में भी धर्म है। मन यहां है और शरीर सांसारिक कार्य कर रहा है, इस प्रकार की प्रवृत्ति जिसके जीवन में आती है उसका जीवन सफल है। मनुष्य पर्याय सफल है, संसार जीवन भी सफल है और संसार को छोड़कर यदि श्रमण भी बनते हैं, मुनि भी बनते हैं, तो मुनि जीवन भी सफल हो सकता है। उदासीनता, निर्मोहता, अनाशक्ति का भाव निरंतर हमारे पास जीवित रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, उसकी अनुभूति सतत होते रहना चाहिए। ऐसा ही रखना, एक क्षण के लिए भूल भी गए तो लौट के तुरंत आ जाना चाहिए कि हम कहां गए थे, भटक रहे थे, रागियों को देख रहे थे। भूल चूक होती है, रागियों को देख लेता है, राग रूप ढल जाता है आत्मा। ये ऐसा कांच है
जिस बर्तन में रखो वैसा होता है,
ये ऐसा कांच है, ये ग्लास है, इसको जो कलर डाल दो, जो कलर जो कलर का पानी डाल दो
वैसा ही कलर
दिखाएगा, वैसा कलर को वो दिखाएगा। आत्मा ग्लास के समान है, उसका कोई ओरिजिनल कलर है ही नहीं। ग्लास का कौन सा कलर होता है? कोई नहीं। पर पानी का भी कोई कलर नहीं होता। पानी में कोई अपना रंग घोल करके ग्लास में या पानी को ऐसा रखेंगे तो उसी कलर का दिखता है। तो ऐसा हो रहा है अनादिकाल से, हमने रंग घोला है आत्मा में और वह रंग बिरंगा दिख रहा है, यही संसार है। आत्मा रंग बिरंगा ना दिखे, ये है परमात्मा दशा। अरहंत भगवान कौन है? जो रंग बिरंगी नहीं है वही अरहंत। ग्लास के समान पारदर्शी है जिनका ज्ञान और आत्मा, वे हैं अरहंत भगवान। ऐसा अरहंत अवस्था हम भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी की यात्रा हम कर रहे हैं, उसी के लिए जीव सिद्धांत चर्चा हो रही है। जीव के सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं, जीव के सिद्धांत की चर्चा। जीव में क्या क्या सिद्धांत छिपे हैं, क्या क्या नियमावलियां हैं, क्या क्या स्वाभाविक उसकी परिणतियां हैं, क्या क्या परिवर्तन करता है वो स्वभाव रूप से, उन्हीं सिद्धांतों को समझने के लिए प्रयास चल रहा है। गुणस्थान 12वें का कहलाता है मोह रहित गुणस्थान, 13वां गुणस्थान है सयोग केवली गुणस्थान। सयोग यानी योग सहित, योग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको ध्यान में है, योग 15 प्रकार के तो हैं सामान्य रूप से, 3 योग मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनके भेदों को प्रभेदों को और जानेंगे तो 15 प्रकार का योग होता है। मूल में 3 प्रकार का योग है। योग का अर्थ होता है मन की चपलता, वचनों की प्रवृत्ति, बोलना ये वचन योग है, हम बोल रहे हैं ना ये कौन सा योग है, वचन योग। और काया की जो चेष्टा है, शरीर जो हिलता डुलता रहता है हमेशा, ये काय योग है। और मन के माध्यम से जो हम सतत विचारशील रहते हैं, मन सतत जो काम करता रहता है भीतर बैठे बैठे, उसको मन की चपलता को हम क्या कहते हैं, मनोयोग। ये 3 योग हैं। ये तीनों योग अरहंत भगवान के पास हैं। कषाय से तो मुक्त हो गए हो, मोहनी कर्म का एक भी कर्म उनके पास 28 में से एक भी नहीं है। और मोहनी कर्म का नाश होने से ही शेष जो घाती कर्म 3 थे वो टिक नहीं पाए, रह नहीं पाए। ये बड़ी विशेषता है कि जिसने मोह को जीत लिया, ज्ञानावरणी कर्म को जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है, अंतराय कर्म को जीतना कोई मुश्किल बात नहीं है, दर्शनावरणी कर्म को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, ज्ञान को नष्ट करने वाला, ज्ञान में विघ्न डालने वाला ज्ञानावरणी कर्म है जो हमारे ज्ञान की शक्ति को कुंठित कर रहा है, उस ज्ञानावरणी कर्म को नाश करना भी कोई कठिन बात नहीं है। मोहनी कर्म एक नष्ट हो गया तो अंतर मुहूर्त में इनको तीनों को नाश होना ही पड़ेगा, हम नहीं भी करना चाहते हैं तो होना पड़ेगा, करना कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं भी करना चाहते हैं तो अपने आप हो ही जाता है। लेकिन मोहनी कर्म ऐसा नहीं, हम नहीं भी करना चाहते हैं तो मोहनी कर्म कदाचित नाश हो जाए, ज्ञानावरणी कर्म जैसे, अंतराय कर्म जैसे, ऐसा हो सकता नहीं। मोहनी कर्म को तो हमें बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक पूरा शक्ति लगाकर नाश करना पड़ेगा। यह जीव मोह के कारण से ही संसार में अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है, क्यों शरीरधारी बनता है, क्यों जन्म लेता है, क्यों मरण करता है, ये बार बार चक्र क्यों चल रहा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, क्या, मोहनी कर्म। जीव मोही है इसलिए सारे कर्मों को बंद कर रहा है। देखो एक विशेष बात ध्यान में रखना, मोहनी कर्म से यदि जीव सहित है तो 8 कर्मों को बांधेगा, अधिक से अधिक 8 कर्मों को, और कम से कम 7 कर्मों को तो बांधता ही है। किससे सहित होने पर, मोहनी कर्म से सहित होने पर। मोहनी कर्म यदि है तो कम से कम 8 कर्मों को और अधिक से अधिक, कम से कम 7 कर्मों को और अधिक से अधिक 8 कर्मों को बांधता ही है। किंतु मोहनी कर्म से रहित होने पर केवल एक ही कर्म को बांधता है। कौन सा, वेदनी कर्म। वेदनी कर्म में से भी दोनों को नहीं, उसके दो भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी, दो भेद हैं, उनमें से एक को ही बांधता है। कौन सा बांधता है, साता वेदनी। साता वेदनी हमें सुख देता है, असाता वेदनी दुख देता है। कैसे दुख देता है, जैसे आप गिर गए, चोट आई, बाद में बहुत दिन तक दुख रहा, महीनों तक दुख रहा, दर्द रहा, और फिर बाद में ठीक हो गया। ये जो दर्द होता है किस कर्म की देन है? असाता वेदनी कर्म की देन है। और एक दो महीने में ठीक होने के बाद दर्द समाप्त हो गया, अब सुख मिलने लगा, ये किसकी देन है? ये साता वेदनी कर्म की देन है। अरहंत भगवान साता वेदनी कर्म को मात्र बांधते हैं, और कोई भी कर्म को नहीं बांधते आठ में से। उसके उत्तर प्रकृति 148 हैं, 148 में से एक ही कर्म को बांधते हैं। देखो कितना फायदा है, फायदा है कि नहीं? बस इस तरफ व्यापार करो, उद्योग करो जिसमें फायदा है। कितना फायदा है, मोहनी कर्म को पूरा नष्ट करने के बाद एक ही कर्म बंधता है, और मोहनी कर्म को रखने से सारे कर्म बंधते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? मोहनी कर्म को जीतना एक ही कर्तव्य है। धर्म किसका नाम है? मोह को जीतने का नाम ही धर्म है। धर्म के संबंध में कितनी अंधश्रद्धा थी अपनी, कैसी कैसी धारणाएं थी अभी तक अनादिकाल से, वो सब अंधश्रद्धा की कोटि में आता है। उसको छोड़ने का नाम ही सम्यक दर्शन। यही तत्व ज्ञान है। मोहनी कर्म से संसार बढ़ता है, ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया, ये तत्व ज्ञान हो गया। अब मोहनी कर्म को छोड़ने का प्रयत्नशील आप हो रहे हैं या प्रयत्न कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि बन गए। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा आनी चाहिए, मोहनी कर्म मुझे दुख देता है, वास्तव में ये सत्य है, और इस पर मैं विश्वास करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, और इसकी साधना करने के लिए मैं तैयार होता हूँ, कह करके साधना में विलीन हो जाओ, तो आपको मिथ्या दृष्टि कौन कहेगा? अंधश्रद्धालु कौन कहेगा? अज्ञानी कौन कहेगा? संसारी कौन कहेगा? नहीं, आप ज्ञानी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, श्रद्धालु हैं, सम्यक दृष्टि हैं, चारित्रवान हैं, सम्यक चारित्र है। तो ये नक्शा हमेशा दिमाग में फिट रहना चाहिए। मोह छोड़ने को धर्म कहा है, और मोह मोही बनकर जीने को अधर्म कहा है। इतना भर समझ में आ जाए सब कुछ ठीक है। फिर हम भौतिक सुखों के पीछे इतना दौड़ धूप नहीं करते, यदि करते भी हैं तो धर्म चलाने के लिए धनार्जन करते हैं। और धर्म क्या धन से चलता है? नहीं, धन की जरूरत नहीं उसको, धन की जरूरत शरीर के लिए है, ये ध्यान रखना। आत्मा के लिए सम्यक दर्शन धारण करने के लिए पैसा लगता है क्या? रत्नत्रय धारण करने के लिए पैसा लगता है क्या?
गरीब बनना पड़ेगा,
गरीब नहीं। रत्नत्रय को धारण करने के उपरांत अब ये जो साथी है शरीर, इसको तो त्याग नहीं कर सकते, ये साथ रहेगा, ये मरण पर्यंत साथ रहेगा। तो इसके लिए कुछ चाहिए क्या? नहीं, खाने पीने के लिए तो उतना कमाना है। शरीर किसके लिए है? रत्नत्रय को टिकाने के लिए। रत्नत्रय को जो प्राप्त हुआ है उसको टिकाए रखना है मरण पर्यंत, इसके लिए शरीर है। और शरीर है तो फिर शरीर को कैसे टिकाएंगे? धन चाहिए कि नहीं? धन तो थोड़ा बहुत चाहिए, मरण पर्यंत इसको टिकाए रखने के लिए जितना धन चाहिए उतना ले लिया, कमा लिया, हो गया, इससे कर्म बंद नहीं होगा। जो धर्म टिकाने के लिए धन कमाता है वो अनासक्त कहलाता है। अनासक्त जीव को कर्मों का बंध बहुत कम होता है, ना के बराबर। ये जीवन जीने की शैली है और इसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। इसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे तो जल्दी मोक्ष जाएंगे, निकट भवी वो। और जरा रुचि की अपेक्षा से हम कम रुचि वाले हैं तो जरा दूर भविष्य बन करके, दूर भवी बनकर दूर काल में मोक्ष जाएंगे। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो जल्दी जल्दी मोक्ष मिलेगा, धीरे धीरे काम करेंगे तो धीरे धीरे मोक्ष मिलेगा। जैसे सांसारिक कार्य होते हैं ना, जल्दी जल्दी करेंगे तो जब अल्प समय में सारा काम पूर्ण होता है, और धीरे धीरे करेंगे तो वर्षों लगा दो तो एक वर्ष के बाद भी वो पूर्ण होते हैं। वैसा धर्म का कार्य भी ऐसा ही, जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा,
सही।
और अभी जागना है, जाग गए, जाग गए कि नहीं जाग गए कि अभी सो रहे हैं। अभी जाग गए तो अभी सवेरा हो जाए, सूर्य का प्रथम किरण चेहरे पर आ जाए और हमारा चेहरा दिखना शुरू हो जाए। एक बार आत्मा का चेहरा दिखा तो आत्मा को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती। मोह रहित आत्मा की अनुभूति ही आत्मा का दर्शन है। अनासक्त आत्मा का दर्शन ही आत्मा का दर्शन है। उसके चेहरे को हमने अनादिकाल से एक बार भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? हम आसक्त रहे, उस आसक्ति में आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। रोज 10 मिनट ध्यान किया करो, समय किया करो, शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। सामायिक करने वालों को हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं होता। क्यों? इफेक्ट है। सामायिक करने के लिए सब कषाय छोड़ने पड़ते हैं, क्रोध छोड़ना पड़ता है, गंभीर धैर्य समतापूर्वक मध्यस्थ होकर के आत्मा में रहना पड़ता है, तो शरीर उसके लिए अपने आप साथ देता है। हार्ट अटैक कब होता है? जब परिणामों की उद्वेगता रहती है उस समय हार्ट अटैक की संभावना होती है। धर्म हमारे लिए हार्ट अटैक से भी बचाता है, क्या आपको ख्याल है?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है क्या? नहीं तो धर्म कितना बड़ा डॉक्टर है। धर्म ही डॉक्टर है। उस डॉक्टर के पास हम सतत रहेंगे तो हार्ट अटैक से मरेंगे नहीं, अकाल मरण अपना होगा ही नहीं, सुखपूर्वक मरेंगे। सामायिक के काल में किसी को हार्ट अटैक हुआ है क्या? सुना है? और दौड़ धूप में उधर जाऊं इधर जाऊं, वो करो ये करो, वो मर गए, हाँ हम भी मर गए हार्ट अटैक। किसी के मरण पर इतना सीरियस क्यों होते हैं आप? मालूम है, आप जितना जोर से सीरियस होते हैं ना, उतने जोर से आप आसक्त थे इसलिए सीरियस हुए। जिसका वियोग हुआ, जिसका मरण हुआ, उसके प्रति आप इतने सीरियस थे, सीरियस ने आसक्त थे, सीरियसली आसक्त थे, तो सीरियसली हार्ट अटैक भी आएगा। दुनिया के किसी भी पदार्थ से, किसी की किसी भी वस्तु से, चेतन और अचेतन दो ही वस्तु हैं यहां दिखने वाले आंखों के लिए। चेतन वस्तु जो हाँ चलते फिरते जीव हैं, वो चेतन वस्तु हैं, और रुपया धन सोना चांदी इत्यादि अचेतन वस्तु हैं। ये दो ही वस्तु के कारण से हार्ट अटैक होता है। फैक्ट है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। क्या कभी आत्मा को देखने से हार्ट अटैक हुआ? धर्म को करने से हार्ट अटैक हुआ, ऐसा होता है? कई लोगों को धर्म करने के लिए कोई घर से उठ करके चला गया, घर छोड़ दिया और बता के नहीं गया, दीक्षा हो गई, तो ये हार्ट अटैक से मर सकते लेकिन वो नहीं मरेगा। हमको बताया नहीं, हमको बताया नहीं, वो चला गया, ये भी चला गया, उसके धड़कन बढ़ गए हृदय के और हार्ट अटैक हो गया। कि किस कारण से हुआ ऐसा, आसक्ति जो गया उसके प्रति ज्यादा मोह किया था, वो मोह वो आसक्ति आपको जीवन को छीन लिया, जीवन चला गया आपका। धर्म को समझना हानिकारक नहीं, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव को धर्म तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक ही है। और धर्म के संबंध में जब आपकी धारणा गलत रहती है तो आप धर्म के निकट आने से, तत्व का विचार करने से आप घबराते हैं, गलत धारणा से घबरा रहे हैं। लेकिन धारणा अगर सही बन गई तो क्या आप धर्म से घबरा सकते? नहीं घबरा सकते। कई लोग साधुओं के पास जाने से घबराते, क्यों घबराते हैं? साधुओं के संबंध में गलत धारणा है। क्या वहां जाने से क्या होगा, उस महाराज को ऐसा देखा था, ये भी तो वैसे ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, जाना नहीं। कुछ भी विचार मतलब इस टाइप के व्यक्ति के पास रहते हैं गलत धारणा के रूप में, और वह हमें सत्संग से रोकता है, और हम घर में बैठे रहते हैं, टाइम पास हो जाता है, चातुर्मास निकल जाता है और हमारी हानि हो जाती है। ऐसा चल रहा है संसार, अज्ञान के कारण से ही चल रहा है। किसी भी वस्तु को परीक्षा किए बिना वस्तु से दूर नहीं होना चाहिए, वस्तु की अच्छी तरह से परीक्षा करनी चाहिए कि वस्तु लाभकारक है या हानिकारक, वस्तु के पास जाने से ही पता चलेगा। पहले से ही क्या धारणा लेकर के बैठे हैं, हमको जाना ही नहीं है साधुओं के पास, हमको जाना ही नहीं है मंदिर, हमको करना ही नहीं है स्वाध्याय। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं जाना? एक बार जाकर के तो देखो कि आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लाभ हो सकता है क्या, हानि हो सकती है, ऐसा क्या विचार नहीं कर सकते? लेकिन अज्ञानता इतनी रहती है कि कुछ जानने से पहले ही उसका परहेज करके बैठ जाते हैं। ये हानिकारक है, गलत धारणाएं हमें उन्मार्ग की ओर ले जाती हैं। धारणाओं को यदि हम ठीक बनाएंगे तो हमारे लिए लाभ रास्ता मिल सकता है, सन्मार्ग की ओर हम आ सकते हैं। सन्मार्ग हमारा हित का कारण है, उन्मार्ग हमारा ही उन्मार्ग हमारे लिए हानिकारक है। उन्मार्ग भी हमारे पास है और सन्मार्ग भी हमारे पास ही होता है। सन्मार्ग के सन्मार्ग पर चलकर हम भगवान बनते हैं, आदर्श बनते हैं, आदर्श श्रावक बनते हैं, आदर्श गुरु बनते हैं। और उन्मार्ग पर चल करके हम अनादर्श श्रावक बनते हैं, अनादर्श गुरु बनते हैं। अपने पास ही सब कुछ है, खजाना खोल करके देख लो तो पद्मनाभ निकलोगे। सही है कि नहीं? इतना खजाना भगवान अंदर ही है, खजाना भरा हुआ है, और खोल करके हमने देखा नहीं, देखने का अवसर आया है। एक बार देख लो, अवश्य एक बार देखो, एक ही बार खोज के देख लो। और खजाना खुलता है ज्ञान से, सत्संग से। अपना आत्मा का खजाना, भीतर का परमात्मा दिखता है, भीतर का वैभव दिखता है सत्संग से, ज्ञान से, स्वाध्याय से, चर्चा से। जोरदार रखो अपने जीवन में चर्चा, तत्व चर्चा, सत्संग और स्वाध्याय बहुत जोरदार करते रहो, बहुत उन्नति होगी। और जीने की कला कैसी रखो, अनासक्त। ये संसार व्यवहार से है, ये इंद्रिय विषय धर्म करने के लिए हैं, जो मिले हैं धन संपत्ति आदि, हमारा रत्नत्रय चल सके शरीर को टिकाना है, शरीर के शरीर को टिकाने के लिए इसको साथ लेना है। धन को बढ़ाने के लिए धर्म करे या धर्म की रक्षा के लिए धन का उपयोग करे, इतना तो विवेक होना चाहिए। कौन किसके लिए है यही ज्ञान नहीं है तो विवेक कहाँ है। धन को बढ़ाने के लिए धर्म है क्या? धर्म करने वाले का धन अवश्य बढ़ता है, ये बात अलग है, सत्य है। जो धर्म करता है धन बढ़ना ही चाहिए। इसके पीछे क्या रहस्य? इसके पीछे ये रहस्य, धर्म करने वाले के परिणाम सतत शुभ रहते हैं। शुभ परिणामों के काल में पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंध होता है, और उसी पुण्य के उदय आने पर व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न रहता है। ये भीतरी सत्य है। धर्म जो करता है उसका शुभ परिणाम होना ही चाहिए, पक्का। धर्म कर रहा है इसका मतलब क्या? परिणाम शुभ हैं, यही अर्थ है उसका। व्यक्ति धर्म कर रहा है इसका मतलब क्या? परिणाम अत्यंत शुभ हैं, यही अर्थ है उसका। और परिणामों को शुभ रखना, चाहे मंदिर में आओ शुभ रहना चाहिए, चाहे संसार में 24 घंटा कहीं भी रहो परिणाम शुभ रहना चाहिए, यही धर्म है। ये धर्म हमारे साथ रहना चाहिए सतत। व्यक्ति कैसे दुखी होगा देख लेंगे, कैसे हार्ट अटैक होगा देख लेंगे। परिणाम शुभ है तो आरोग्य भी ठीक रहेगा शरीर का। सभी धर्म पर ही ये टिका हुआ है, परिणामों पर ही टिका हुआ है। कहीं किसी भी पर्याय में किसी भी भाव में रहो, वहां पर परिणाम शुभ है तो शरीर स्वस्थ है, अंतरंग निर्मल है, रास्ता साफ है, विचार पवित्र हैं, अंतरंग से भी आप आरोग्यपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं, और बहिरंग से भी स्वस्थ हैं। तो धर्म हमको बहिरंग से भी निरोगी बनाता है और अंतरंग से भी निरोगी बनाता है। धर्म की कितनी परिभाषाएं लिखते जाओगे? धर्म किसे कहते हैं? जो हमारे लिए अंतरंग और बहिरंग से स्वस्थ रख सकता है उसका नाम धर्म। लिखो। कितने लिखोगे? नित्य नई परिभाषाएं बनती जाएंगी। धर्म से घबराओ मत, धर्म के संबंध में उल्टी सीधी धारणा मत बनाओ। धर्म हमारा साथी है, उपकारक है, अत्यंत निकटतम दोस्त है, वो मित्र है। इस मित्र का साथ जो छोड़ देता है वो संकट में पड़ जाता है। कहीं भी रहो लेकिन धर्म नहीं छोड़ना। कौन सा धर्म? जो हमें स्वस्थ रख सकता है, ऐसा विशुद्ध परिणाम वाला धर्म, उसको त्याग नहीं करना। मतलब परिणामों को कभी नहीं बिगाड़ना, यही धर्म है, वही दोस्त है, उसको कभी नहीं छोड़ना। तो धन जो है किसके लिए होता है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन को देखते ही आसक्त हो गए, घर को देखते ही आसक्त हो गए, डूब गए उसमें, ऐसा नहीं। ठीक है, पैसा है, संपत्ति है, पीछे हमने शुभ भाव किए होंगे, पुण्य कर्म बंधा था, उसके फल स्वरूप ये मिला है, इसमें क्या आसक्त होना? आसक्त हो जाऊंगा तो धर्म चला जाएगा, शुभ भाव चले जाएंगे। और आसक्त नहीं होता हूं तो फिर ये तो साथ में ही रहेगा, ये तो जाएगा नहीं। लक्ष्मी शुभ परिणाम वालों को छोड़कर कभी जाती नहीं। इसलिए धर्म की दासी है लक्ष्मी, ये कहा है। लक्ष्मी धर्म की दासी है, धर्म जहां रहेगा धर्मराज की सेवा में सतत चरणों में रहकर सेवा करती है। धर्मात्मा को छोड़कर लक्ष्मी जा नहीं सकती, और पापात्मा है तो आज नहीं जाएगी तो पुण्य के उदय से टिकी है वो, कल भी नहीं जा रही है तो अभी पुण्य का उदय है, बहुत समय तक रहा तो भी पुण्य के कारण से वो टिकी हुई है। लेकिन एक न एक दिन आपको लात मारकर लक्ष्मी निकल जाएगी। बताते हैं कि लक्ष्मी जब आती है तो अज्ञानी जीव जो होता है ना, अज्ञानी जीव लक्ष्मी के आते समय स्वागत करता है, हाँ हाँ हाँ, अंदर आ अंदर आ अंदर आ, स्वागत करता है। ज्ञानी स्वागत नहीं करता, मध्यस्थ रहता है, स्वीकार करता है लेकिन स्वागत पूर्ण स्वीकार नहीं। आ रहे हैं, आइए आइए बैठिए, मध्यस्थ भाव से। और अज्ञानी जीव, आइए आइए आइए, आपकी प्रतीक्षा में हम थे, आ गए, और बहुत ज्यादा आ गई तो हार्ट अटैक। बहुत ज्यादा लेकर के आ रही है धन संपत्ति तो हार्ट अटैक। लक्ष्मी जब आती है तो अज्ञानी जीव यूं तन करके चला जाता है, चलता रहता है, नीचे ही नहीं देखता। जीव आदि है इरियापद समिषित, चल चल ही नहीं सकते। धन आने पर वह तन करके चलता, अज्ञानी है, चलेगा ही। और फिर धन आने पर संतोष शांति का जीवन भी जीने की कला उसके पास नहीं रहता। हाय हाय हाय, कम पड़ गया, और थोड़ा आना था लेकिन नहीं मिला नहीं मिला, और थोड़ा और थोड़ा, हाय 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 में जीवन जाता है। और हाय हाय करते समय कौन सा कर्म का बंध होता है? पाप कर्म का। और वह पाप कर्म का उदय आएगा वापस, तो फिर लक्ष्मी कहती है जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा उस वक्त मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी। तो कहा जाता है लक्ष्मी जब आती है छाती पर लात मारती है, ये बताया जाता है। हाँ, छाती पर लात मारती है तो फ्रैक्चर हो जाता है, अब झुक करके नहीं चल सकता, देख करके चल नहीं सकता, वो टाइट हो जाता है, यहां अकड़ जाता है, फ्रैक्चर है ना, उसको कैसे झुकाएंगे, दर्द होता है। लक्ष्मी जब आती है तो व्यक्ति को फ्रैक्चर हो जाता है सामने की ओर, और लक्ष्मी जब जाती है तो पीठ पर लात मारकर चली जाती है, तो झुक करके चलने लगता है, ये फ्रैक्चर समाप्त हो जाता है और इधर का फ्रैक्चर शुरू होता है, तब तक ये ठीक हो जाता है और इधर का फ्रैक्चर हो जाता है। तो फिर ऐसा देख करके चलता है, फिर जीव भी दिखने लगते हैं, सब दिखने लगते हैं, फिर धर्म भी दिखने लगता है, हे भगवान मैंने क्या किया गलती। धर्म भी दिखने लगता है और जीव भी दिखने लगते, देख देख कर जबरदस्त चलना पड़ेगा। धर्म जीवों को बचाना धर्म है, लक्ष्मी कहते हैं आप यही काम करना जब तक लौट के नहीं आऊंगी, और इस बार आऊंगी तो ध्यान रखना, ज्ञानी बनकर स्वागत करना, अज्ञानी बनकर नहीं। अज्ञानी बनकर स्वागत करते हो तो पुनः फ्रैक्चर होगा, सामने होगा। और ज्ञानी बनकर स्वागत करते हैं तो मैं बाजू से गुजर कर तुम्हारे पास रहूंगी, लात नहीं मारूंगी। ज्ञानी जीव को लक्ष्मी लात नहीं मारती, बाजू से आती है और बाजू से चली जाती है। लक्ष्मी भी सत्कार करती है, किसकी? धर्मात्मा की सत्कार करती है, ज्ञानी की सत्कार कर। तो धन संपत्ति वैभव आदि में इन सब को आंखों से देखकर कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे परिणामों को रखना चाहिए, ये कला अगर आ गई तो धर्म क्यों नहीं आएगा जीवन में? यही श्रावक धर्म है। मुनि धर्म उससे ऊंचा है, घबराओ नहीं। वहां तक जाने की शक्ति नहीं है तो कम से कम ज्ञानी बनकर जीने की कला सीखो, वही श्रावक धर्म है। और ज्ञान मिलेगा सत्संग से, स्वाध्याय से, चिंतन मंथन से, चिंतन मनन से। सतत जारी रखो। 13वां गुणस्थान का नाम सहयोग के। देखो, आप लोगों को सहयोग देना पड़ता है, पढ़ाते समय में भी बीच बीच में सहयोग। जीवन भी बने और ज्ञान भी बढ़े, दोनों एक साथ काम हो रहे हैं। ज्ञान आवश्यक है, सिद्धांत का ज्ञान भी आवश्यक है, पर उपदेश के साथ सिद्धांत का ज्ञान लेंगे ना, वो जीवन बन जाएगा। एक तरफ उपदेश मिल रहा है और एक तरफ सिद्धांत का ज्ञान भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ने दो, धीरे धीरे बढ़ने दो, पर उपदेश बहुत आवश्यक है। कौन सा काम हम किस लिए कर रहे हैं यही मालूम था नहीं था अनादिकाल से, अब लक्ष्य बनाकर, ध्येय बनाकर हमको सब कुछ काम करना है। सहयोग केवली गुणस्थान में अरहंत भगवान तीन योगों से सहित होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। ये योग है इसलिए उस एक कर्म का भी बंद हो रहा है। अरहंत भगवान के पास मोह तो है नहीं, मोहनी कर्म को नष्ट किया, और मोहनी कर्म को नष्ट करने के कारण से ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन कर्मों का अपने आप नाश हुआ है, तो चार कर्म चले गए। जिसके चार कर्म नहीं होते उन्हीं को अरहंत भगवान कहते हैं। अब बचे कितने कर्म? चार कर्म। वो कहां से आए हुए हैं? जो मोह के काल में बंधे थे वो अभी गए नहीं, मोह के कारण से ही उनको बांध करके रखा है आटों को, उसमें से चार को तो हटा दिया और चार अभी सत्ता में है। अब इन कर्मों को हटाना है क्या? नहीं, अरहंत भगवान हटाते हैं। चार कर्म हैं, हटाते हैं, किंतु ये चार कर्म जब तक नहीं हटेंगे तब तक वो सिद्ध भगवान नहीं बनेंगे। अरहंत कौन जो चार कर्मों से तो सहित है और चार कर्मों से रहित है? उन्हीं का नाम अरहंत। और इनका शरीर होता है कि नहीं? शरीर भी होता है। इनका उपदेश मिलता है कि नहीं? उपदेश भी मिलता है। इनका विहार होता है कि नहीं? विहार भी होता है। ये ध्यान करते हैं कि नहीं? ध्यान भी करते हैं, ध्यान करते हैं, उपदेश देते हैं, विहार होता है, सब कुछ होता है। समोचरण किसका लगता है? सिद्धों का क्या अरहंत का? समोचरण किसका लगता है? आचार्य उपाध्याय साधुओं का या अरहंत का? अरहंत का। साधुओं का धर्म सभा लगता है, अरहंतों का समोचरण लगता है। समोचरण का क्या अर्थ? समोचरण,
सभी को समान रूप से शरण मिले, सभी को
सम यानी सम्यक यथार्थ रूप से अवसरण यानी प्रवेश, अंदर जाने का प्रवेश, सम यानी सम्यक रूप से, शरण यानी प्रवेश, प्रवेश मिलता है सब जीवों के लिए, उसमें भेदभाव नहीं, कौन साहूकार कौन गरीब कौन दुरात्मा कौन अच्छा आत्मा, ऐसा कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए मार्ग खुला हुआ है उपदेश सुनने के लिए, सभी शरण लेते हैं, सब जीव आते हैं। किसी के लिए द्वार बंद है ऐसा नहीं, गरीब आ गए तो द्वार बंद और साहूकार आ गए तो द्वार खुला, ऐसा समूह शरण में चलता है क्या? मानव मात्र के लिए द्वार खुला हुआ है। ये धर्म का उपदेश ऐसा ही होता है, धर्म ने धर्म उसका उपदेश सुनने के लिए सभी पात्र हैं। सब में भगवान बनने की शक्ति है तो धर्म सबके लिए है, धर्म का उपदेश सबके लिए है। सब में परमात्मा बनने की योग्यता है तो क्या धर्म उसके लिए नहीं चाहिए? ये गरीब और साहूकार ये तो बाहर वाली बात है, ये भौतिक बात है, भौतिक बातों से कोई मतलब ही नहीं रहता। धर्म करते समय सब समान हो जाते हैं। समूह शरण में देख लो, वहां चक्रवर्ती भी गए तो उनके साथ साथ एक गरीब भी चल रहा है। चक्रवर्ती क्या कहेगा? हे चल पीछे हट, पीछे हट। समूह शरण में कहा जा रहा है, कुछ भी धन नहीं संपत्ति नहीं, क्या धर्म करेगा? चक्रवर्ती ऐसा कहेंगे? गरीब दिखा तो चक्रवर्ती उठा करके खड़ा कर देता है उसको, क्यों दुखी हो, क्या हो गया तुमको? तो मुझे धन नहीं है, धन की चिंता मत करो, चलो मेरे साथ पहले धर्म करो, चलो भगवान के पास हम उपदेश सुन के आएंगे, धन अपने आप आएगा, चिंता मत करो। दोनों हाथ पकड़ करके ऊपर उठाएगा और समूह शरण ले जाएगा और वह गरीब व्यक्ति संक्लेश परिणाम को धारण कर रहा है, अज्ञानवश, अज्ञानवश संक्लिष्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये परिणाम दुखमय हो रहे हैं। क्या पाप कर्म का बंध नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो यही तो अधर्म है, तुम अधर्म कर रहे हो और सुख के इंतजार में हो। कैसा सुख आ सकता है? सुख के दिन आ सकते हैं। परिणामों को ठीक बनाओ और इनको ठीक बनाने के लिए भगवान का उपदेश तुम्हारे लिए जरूरी है। चलो समूह शरण चलो, ले जाकर साथ में बिठा देता है। मैं भी उपदेश सुनता हूं, तुम भी उपदेश सुनो। इस टाइप के परिणाम चक्रवर्ती के होते हैं। चक्रवर्ती क्योंकि ज्ञानी, कोई भी चक्रवर्ती जन्म के साथ मिथ्या दृष्टि नहीं रहते, सम्यक दृष्टि ही रहते। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन नष्ट भी हो सकता है चक्रवर्ती होने के बाद भी, पर नष्ट नहीं करे तो सम्यक दृष्टि रह सकता है, जन्म के साथ सम्यक दृष्टि रहेगा। और वह सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती ज्ञानी ही कहलाएगा। सम्यक दृष्टि को हम अज्ञानी नहीं कह सकते। इन शब्दों को ध्यान में रखना है। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है ज्ञानी जीव और मिथ्या दृष्टि का अर्थ होता है अज्ञानी जीव। जहां अज्ञान होता है वहां अंधविश्वास तो रहता है, जहां अज्ञान रहता है वहां मिथ्यात्व तो रहता है। मिथ्यात्व का अर्थ भी क्या? अज्ञान। मिथ्यात्वी मतलब क्या? अज्ञानी। सम्यक्त्वी का मतलब क्या? ज्ञानी, समझदार, विवेकी, जिसने जान लिया है स्व और पर के रहस्य को, पर कुछ भी नहीं है, निसार है, स्व ही आत्मा ही सार है, ऐसा जिसने जान लिया है वो ज्ञानी, और जिसने नहीं जाना है वो अज्ञानी। जो खुद को नहीं जान रहा है वो अज्ञानी, और पर को बहुत कुछ जानता है वो अज्ञानी। पर ही पर को जानने में लगा हुआ है अज्ञानी, स्व को छोड़कर। धर्मात्मा किसका नाम? जो आत्मा को जानता है वो धर्मात्मा, जो खुद को जानता है वो धर्मात्मा है, और जो खुद को नहीं जानता वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। खुद को, एक खुद को छोड़कर बाकी सब दुनियादारी में, दुनियादारी के कामों में उलझा हुआ है वो कौन? अज्ञानी कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, अंधविश्वासी कहो, भूला भटका कहो, संसारी कहो, कषायी कहो, उलझा हुआ कहो। कितने सारे, सभी दोषों के जितने नाम है ना, वो सब वहां पर घटित होते हैं। और गुणों के, सद्गुणों के जितने नाम है ना, वो धर्मात्मा के लिए घटित होते हैं। यहां से आप बाहर चले जाते हैं, जरा भी चारों ओर देख लेते हैं तो अज्ञानी ही अज्ञानी मिलते हैं, एक भी ज्ञानी नहीं मिलेगा। कैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा? आत्मा की बात करने वाला नहीं मिलेगा, तत्व की बात करने वाला नहीं मिलेगा, धर्म की बात करने वाला नहीं मिलेगा, सत्संग की बात करने वाला नहीं मिलेगा, विवेक की बात करने वाला नहीं मिलेगा, सुख पर चलने की बात करने वाला नहीं मिलेगा। वो कहां मिलेंगे? मिलेंगे तो यहां से जो तैयार हुए हैं और बाहर खड़े हैं वो मिलेंगे। हाँ, ये फैक्ट्री में तैयार हो करके बाहर को ही बैठे हो तो वो मिलेंगे, लेकिन यहां कोई आए ही नहीं, वो मिलेंगे ही नहीं आपको। तो इसलिए बहुत संभलना है, बहुत संभल संभल करके चलना है। यहां इस फैक्ट्री में आप क्या बन रहे हैं मालूम? खदान में रत्न था और उसके ऊपर कवच था, पत्थर मिट्टी वो ये चिपका हुआ था, सफाई तो करनी पड़ेगी,
कोरा कर
मशीन में ले जाकर एक एक मिट्टी के कण को दूर करेंगे तो वो जो रत्न है, रत्न जहां से शुरू हुआ उसके अंदर कोई मिट्टी के कण नहीं है, वो तो कोहिनूर है, अखंड है, लेकिन उसके आसपास में जो चिपका हुआ मिट्टी, मिट्टी के कण पत्थर थे, उसको तोड़ तोड़ करके हमने अलग कर दिया। आपको तोड़ तोड़ करके अलग कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, सबको तोड़ रहे हैं। आपको आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद आना चाहिए तोड़ते समय। गुरु हमको तोड़ते हैं तो बहुत आनंद आना चाहिए। गुरु का तोड़ना भाग्य है, और कोई दूसरा तोड़ता है तो दुर्भाग्य है। और जीवन में एक गुरु आवश्यक है, सच्चे गुरु आवश्यक है, जो हमारी बात हमको समझाता है, जो हमको बना देता है, जो हमको कोहिनूर हीरा बना देता है। ऐसे सच्चे गुरु एक जीवन में आवश्यक है। बहुत सारे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक गुरु तो आवश्यक है। बहुत हो तो जहां जाओ वहीं सत्संग, जहां जाओ वहीं पर अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, उससे हम अपने आप को बना सकते हैं। सब जगह गुरु ही गुरु, सत्संग वाले गुरु मिले तो बहुत अच्छी बात है। हमको अपने आप को बनाना है, निर्माण करना है, तो एक सच्चे गुरु को बना लेना, उनसे हमेशा उपदेश सुनते जाना, उपदेश सुनने के लिए गुरु बनाया जाता है, गुरु उपदेशक होता है और श्रावक श्रावक होता है। श्रावक का अर्थ ही है सुनने वाला। यह श्रवति श्रुणोति, यह श्रुणोति सश्रावक। जो सुनने की पात्रता ही केवल रखता है, सुनाने की पात्रता उनमें नहीं होती, जिनमें नहीं होती है उसको है, उसको कहते हैं श्रावक। यह श्रुणोति सश्रावक, श्रावक सुनने वाला होता है और श्रमण सुनाने वाला होता है। वो गुरु पद है, श्रमण ने सबको जीत लिया है, श्रमण ने सबको त्याग दिया है। जो निस्सार था वो सबको हटा दिया है, जो काम का नहीं था वो सबको छोड़ दिया है और वो लौट कर अपनी ओर आए हैं, अपने को जान रहे हैं, अपने को कोहिनूर हीरा बना चुका है। उस हीरे को देखकर हमको भी हीरा हीरे बनने की पात्रता है ही अंदर, लेकिन ऊपर से पत्थर मिट्टी सब पड़ा हुआ है, उसको हटाने की जरूरत है। हीरे हो, हम पत्थर और मिट्टी को हटा रहे हैं तो दुखी मत होना। हम क्या बनाने जा रहे हैं आपको? हीरा बनाने जा रहे हैं। हीरा बनाना तो हमारी दृष्टि है और हीरा बनाने से पहले जितना समय लगेगा वह आपका रास्ता है चलने का, और इसलिए हीरे को हीरा कहा और उससे उल्टा पड़ेंगे राही बनता है। हीरे की बात को सुना सुना करके आपको हम राही बना रहे हैं, राही, और राह पर यदि आप चलेंगे तो हीरा बन ही जाएंगे। बनना है ना हीरा? आप खुद हीरे बन करके बाजार में घूमते रहो, इस कोहिनूर हीरे को देख करके उनके आंखें भी चमका देती है। ये चमक के कैसे रहा है, ये चमक कैसे रहा है, मैं क्यों नहीं चमक रहा हूं, ऐसा उनको भी विचार आएगा। अरे तुम पहले ऐसे थे, ऐसे कैसे हो गए? आप में तो चमक अलग ही दिख रही है, आप शांत दिख रहे हैं, आप ज्ञानी दिख रहे हैं, पहले जैसे थे मेरे साथ ही रहते थे, अब इतना परिवर्तन कैसे आपके जीवन में? कोई पूछेगा नहीं। अरे ये तो आप नहीं जानते, चुप रहो, हम बताएंगे आपको, समझाएंगे एक दिन, पूछना बार बार पूछना तब बता दूंगा, और एक दिन उसको भी बता देना आप कैसे हीरे बन गए, आपको हीरा किसने बनाया, इसको नहीं बताना, किसने बनाया इसको जल्दी नहीं बताना, क्यों? महत्व कम होगा। किसने बनाया इसको बताओगे तो महत्व कम होगा। महत्व क्यों कम होगा? वो समझता नहीं है। पहले ये बताना कि हम हीरे कैसे बन गए मालूम? हमने अपने आप को समर्पित किया अपने लिए, तब हम हीरा बन गए। अपने लिए समर्पित किए बिना अपने आप को, हम इस आत्मा को किसी के सामने ले जाकर खड़ा नहीं कर सकते। यह हमारी रुचि थी, हमारा समर्पण था, हमारा ध्येय था, लक्ष्य था, उस लक्ष्य के कारण से हम ऐसे हो गए। और बनाने वाले तो केवल एक निमित्त मात्र रहते हैं, वो तो केवल सुनाते हैं, और सुनाने के बाद हमारे ऊपर जो मिट्टी पत्थर लद चुका है इसको एक एक कण हम उतारते हैं, वो नहीं उतारते। इसलिए हीरे बनने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पात्रता गुरु की नहीं होती, अपेक्षाकृत बात है, घबराओ नहीं, अपेक्षाकृत बात है। पात्रता गुरु की नहीं होती, गुरु तो सदा ही लोक में है, किंतु बनने वाले की पात्रता बहुत ज्यादा होती। बनने वाला समर्पित ही न हो और गुरु के चरणों में जाकर के बैठा है और गुरु उपदेश बरसा रहे हैं, फिर क्या वह हीरा बन जाएगा? नहीं बनेगा।
समर्पण के भाव,
तो इसी से विचार कर लो कि पात्रता किसकी अधिक होती है, बनने वाले की या बनाने वाले की? बनने वाले की।
सच्चे गुरु भी मिलना चाहिए।
सच्चे गुरु मिलना चाहिए, कच्चे गुरु नहीं मिलना चाहिए। समय हो गया, समय को तो देख ही नहीं पाते कि वो हो गया होता है। जिनवानी
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीशन वाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।